लगी वो जो हजी और मजबूत काम पड़ गया। आज लोग सुनते नहीं लगती नहीं बात क्या है कि लोग मन लागो बहु मारे लांग बहुत जगह सिंगल लगा हुआ है, एक जगह केंद्रित हो जाए तो निहाल हो जाए। इस बात से भाई ये सब कुछ जयभाव है, परंतु कब तक है कि जब तक आग चिंतन आती है ढोंगड़ी चलती है प्यासों की, तब तक ये समाप्त होते ही कुछ नहीं। बिल्कुल जयराम याद तक नहीं रहेगी। आज धन के ऊपर गर्व करते हो घमंड करते हो, कहते क्या पता पता बताओ इस जन्म से पहले कहाँ थे, क्या संपत्ति थी, कौन कुटुम्बी थे, याद है? कहते नहीं। तो कोई नई रिवाज हो जाएगी क्या? अब सामने रखते हमारे ये बड़ी उलझन है तो उस पर कुछ विचार होता। आप कुछ नहीं रखते हैं तो अपने मन में आज इसी बात कह देना, परंतु बढ़िया बात तो वही होती है जो चित्त की उलझन हो, मन में अंतःकरण में खलबली मचती हो, उसका समाधान किया जाए तो उससे ठीक होता है। नहीं तो अपने अपने मन सब दुख दुखी बजाते हैं, हम भी मन बजा दें, ये बात अपनी अपनी बारी निकालते हम भी निकाल देंगे अपनी बारी। नारायण 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 नारायण। अब देख लो तो सुनाई देता है ना, ठीक है तो वो देखते रहना, आप ख्याल करते रहना और चेताते रहना, जहाँ सुनाई ना दे तो ठीक कर लेना। हाँ तो ये ठीक करो भाई यंत्र को, गुजार होने से शब्द तो जोर से होता है, मन कहते क्या इसका पता नहीं लगता, और उस देव को कम कर देते हैं तो शब्द नहीं सुनाई देता, ज्यादा वेग करते हैं तो सुनाई तो देता है, क्या कहते हैं इसका पता नहीं लगता। ये दशा है लव स्पीकर
की। सत्संग क्या है?
अरे भाई सत का संग है, उसका नाम सत्संग है। बोलो और बोलो। सत का संग, सत के साथ जो प्रेम आकर्षण प्रियता, उसका नाम है सत्संग। और सत में जब तक आकर्षण नहीं तब तक चर्चा करो, बोले सत्संग नहीं हुआ। अच्छा है अगर आप मंगलचरण में सेवा ठीक की, सत का संग तो सत में आकर्षण हो, आकर्षण तो होगा सत में, तो नाम मात्र राजी हो जाओ भले ही हम सत्संग करते। रुपया पैसा भोग आराम सुख मान बधाई ये चीजों में जब तक आकर्षण है प्रियता है तब तक सत्संग नहीं हुआ। क्यों? ये टिकने वाली है क्या चीजें? मान टिकने वाला है, भोग टिकने वाला है, संग्रह टिकने वाला है, सही टिकने वाला है, ये बधाई आदर सत्कार टिकने वाला है या रहने वाला है क्या? ये सब का सब असत है, उसमें जब तक आकर्षण है तब सत्संग है, असत का संग है। नाम का सब धर्मो बने, संग सत्कार नहीं है। अच्छा है कर जाओ, ये भी एक समाचार है ठीक। अच्छा सिनेमा में जाते हैं कोई सत्संग में जाते हैं, उनके वो ये दर्शन है ये दर्शन अच्छा है, उसकी अपेक्षा ठीक। और बोलो नारायण घोष भाई। आप यहाँ रहने वाले इस सत्संग में आने वाले हैं बाहर से आए हुए? बाहर से जयपुर के शहर में सत्संग रहने वाले हैं? नहीं कोई सत्संग करने वाले यहाँ के आप और हम बातें करते ही रहते हैं। यहाँ पे कोई भाई हो और वो कोई पूछे बात तो उनका बात की जाए, नहीं तो मैं तो ये भी कर लूंगा, आप कहोगे वैसे कर लूंगा, हमें तो बारी निकालना है एक घंटा भर ये निकाल लें। अपना तो भाई बारी निकालना है, एक कहना है धर्म, एक कहावत है कि बैल बैठ गैर ब्राह्मण कह छूटे, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
नारायण
श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 प्रपन्न पारिजाताय कोटभेषुपाणवे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वैदेहभूषितकरान् नवनीतराघात् ीरांबरागरुणगुंडसलाघोषात् पूर्णेन्दुसुंदरमुहादरगंदनेत्रात् कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहंगजाने हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। राम 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 सिद्धांत कई तरह के हैं, आचार्य कई हुए हैं, उन आचार्यों ने अपनी अपनी पद्धति को अपनाया है, उसी का वर्णन किया है और उन पद्धतियों से उनको लाभ हुआ है। इस बात के अपने अनुयायियों को कहते हैं कि ऐसे चलो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये सभी सत्य कहते हैं और उसी के अनुसार चलने से कल्याण होता है, बात ठीक है। जो वास्तव में सत्य के जीवन मुक्त पुरुष हुए उनकी बात भी नहीं कहता। अब आप चाहे हम कैसे उस तत्व को प्राप्त करें, हम जैसे साधारण आदमी गृहस्थों में रहते हुए अपने काम करते हुए परमात्मा प्राप्त कैसे करें, इसके लिए आप ध्यान देकर के सुने मेरी बात, माने न माने आपकी ही मर्जी है, अपन थोड़ा कृपा कर सुन ले, चित्र सुनने हुए हैं। आपकी भीतर की भावना परमात्म तत्व की प्राप्ति की होनी चाहिए। आपके सामने नाशवान पदार्थ भी है और अविनाशी की बात भी सुनते हैं, परमात्म तत्व वो अविनाशी है, नित्य है और जितना हम देखते हैं सुनते हैं समझते हैं ये पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, फिर तो ये नित्य बदलता है, रहता नहीं है। तो सबसे पहली बात है जो आपके देखने में, जानने में, समझने में बात आती है कि ये रहने वाले नहीं है, उन पदार्थों में आप आकृष्ट न हो, उनमें खींचे नहीं, उन पदार्थों को महत्व न दें। कारण कि आप तो रहने वाले हैं नित्य और ये चीजें हैं अनित्य, तो इनके द्वारा आप कैसे शांति प्राप्त करेंगे, कैसे इनके साथ आप रह सकते हैं और कैसे ये पदार्थ आपके साथ रह सकते हैं, ये दोनों साथ रहना संभव नहीं है। तो इनके भरोसे अपनी उम्र खो देना है, बहुत बड़ा भारी धोखा है। इस बात का ख्याल हरेक भाई को हरेक बहन को करना है। इन शरीरों से, इन मकानों से, इन रुपयों से, इन परिवार वाले लोगों से कितना दिन काम चलाएंगे, इनके भरोसे कब तक रहेंगे। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, और इस और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। और तीनों का आशा है, भरोसा है, विश्वास है, ये जीव की जड़ता है, इसको जीव की मूर्खता कहा। परमात्म तत्व के सिवाय और की आशा रखना, और का भरोसा रखना, और का विश्वास रखना, शरीर का, कुटुंब का, धन का, मकानों का, विश्वास भरोसा, इनसे हमारा काम चलेगा, ये भरोसा, इसका नाम है जड़ता, मूर्खता, बेसमझी, अज्ञान, जो कुछ कर इस बनाने। इस बात से इनकी सेवा करो, बर्ताव करो, भरोसा मत रखो, क्योंकि किस क्षण में वियोग हो जाए पता नहीं है। एकदम अचानक मारे काल, अचानक सफेदगी हुए शरीर में, रात भी घेरी खत्म हो जाएगा शरीर में। इस वास्ते इनकी आशा विश्वास भरोसा है, ये ही वास्तव में मूर्खता है, ये प्रत्यक्ष बात है। और जो मनुष्य प्रत्यक्ष बात को भी नहीं मानता वो क्या मानेगा। आपका हमारा ये बिल्कुल अनुभव है कि एक दिन बच्चे थे हम, बच्चे छोटे बालक थे। आज उस बालकपन को आप बता सकते हो क्या, ये मेरा बालकपन रहा है। ऐसे तो बालकपना रहा ही नहीं, कैसे बता दूंगे। तो बालकपना नहीं रहा तो ये जवानी रहेगी या ये बुढ़ापा रहेगा। अगर रहने की रीति होती तो पालक बना रहता, और उसके रहने की रीति नहीं है तो ये जवानी, वृद्धावस्था, निरोगता, सरोगता ये भी रहने वाला नहीं है। और रहने वाला नहीं है उसका भरोसा करना कितनी मूर्खता है। जानते हैं कि नहीं रहेगा और फिर भी भरोसा उसी का ही, विश्वास उसी का ही, आशा उसी की, सहारा उसी का ही, महत्व उसी को ही देना। इसको महत्व वो नहीं देना है जो साथ रहे, ऐसा नहीं। इनका उपयोग ठीक तरह करो, अच्छी से अच्छी तरह से उपयोग करो। जैसे जर्फ रहता हो तो हाथ पैर धो लो, स्नान कर लो, पी लो, पर ये सही रहेगा ये विश्वास मत रखो, ये तो बहता है। इस बात से शरीर, संसार, कुटुम्ब सब बहता है, बह रहा है और बह करके नाश में जा रहा है। खूब ध्यान में, इसमें शंका गुंजाइश नहीं है। संसार मात्र नाश की तरफ जा रहा है, तेजी से खत्म हो रहा है, ये दृश्य अदृश्य हो रहा है, ये दर्शन अदर्शन में जा रहा है। इस बार से इनका भरोसा मत रखो। और हम क्या करें, एक अविनाशी परमात्मा है ऐसा शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, साथ वेद पुराण आदि कहते हैं, विवेक आश्रित पुरुष हुए वे सबके सब कहते एक परमात्मा है। वो कैसे इसलिए आपकी स्थिति से मत सुन, कैसे वो है वो, और ये कैसे वो है नहीं, ये जीतता है इसको सत कहो असत कहो नाशवान कहो अविनाशी कहो नित्य कहो अनित्य कहो कुछ भी कहो, क्योंकि ये रह जाने ये बात सच्ची है। और परमात्मा रहने वाले हैं ये बात शास्त्रों से संत महात्माओं के कहने से सच्ची मानते हैं, वो मान्यता है ये ठीक है। और ये संसार इसको तो हम जानते हैं, इसमें कोई वहम नहीं है, ये रहने वाली चीज नहीं, इनका उपयोग करो अच्छे से अच्छे काम में, उत्तम से उत्तम काम में लगाओ, उपयोग के लिए भी ये काम की चीज है, ये विश्वास भरोसा ऐसा रख ले इसके काम की चीज ये नहीं है। इस वास्ते ये साधन सामग्री है, ये साध्य नहीं है। धन और भोगों को साध्य मान रखा है, इसको देर है बस यही हमारे साध्य बस, ये साध्य है ही नहीं। केवल इस बात का सुधार करना है, किसी मत का हो किसी मजहब को मानने वाला हो, ये साध्य वस्तु नहीं है। साध्य वस्तु नित्य है, नित्य तत्व अविनाशी, उसको हम प्राप्त कैसे करें। जो विनाशी है इसको आप जानते हैं ना, तो विनाशी का विश्वास मत करो, विनाशी का भरोसा मत रखो, विनाशी की आशा मत रखो, विनाशी का काम करो। विनाशी वस्तु दो है तो वस्तु है, एक ये व्यक्तियां हैं तो वस्तुओं के द्वारा व्यक्तियों की सेवा करो, परंतु इनको स्थायी मत मानो। क्यों, ये स्थायी है नहीं, ये अनुभव है, सबका अनुभव है, ये चीज फिर रहने वाली नहीं। इस बात से आशा विश्वास भरोसा छोड़कर उपयोग करो, इनके द्वारा सेवा करो, ये आज असली काम करने वाली। मत मतांतर अनेक तरह के हैं, परंतु ये विनाशी है और परमात्मा अविनाशी है, इसमें दो मत नहीं है। और ये संसार कैसा है इसके बीच में मतभेद है, और हमारा संबंध नहीं था और नहीं रहेगा, ये बात सच्ची है। ध्यान देना मेरी बात पर, संसार कैसा है, सत्कार्यवाद है अंधकार्यवाद है विवृतवाद है परिणामवाद है आभासवाद है परमाणुवाद है, कई तरह के वाद है, इसमें मतभेद है बहुत, परंतु हमारे साथ रहने वाला ये नहीं है नहीं है नहीं है, इसमें कोई मतभेद नहीं। तो इनके भरोसे अपनी उम्र खराब कर देना बहुत बड़ी गलती, उस अविनाशी तत्व की प्राप्ति के लिए वस्तुओं का उपयोग करो, व्यक्तियों की सेवा करो, और वो अविनाशी को याद करो, वो कैसा है, सगुण है कि निर्गुण है कि साकार है कि निराकार है, ये निश्चय मत करो, है इतना निश्चय पक्का रखो, क्योंकि उसको पहले कोई जान नहीं सकता, उसको तो मान ही सकते। इस वास्ते जैसे आपके मन में जैसे वैसा स्वरूप, आज दिन तक आपने जितना सुना है जितना विचार किया है जितना शास्त्रों में पढ़ा है, उसके अनुसार आपने निर्णय किया कि परमात्मा ऐसे है, उसी को याद रखो। वो परमात्मा का पूर्ण रूप नहीं है, पर वो आपके लिए पूर्णता को बता देगा, मिला देगा, उस विषय के अनुसार चलते रहो, तो भगवान स्वयं ज्ञान करा देने, और सो जाने के जनाई जिसको भगवान जना देते हैं वो ही जानता है, अपनी अकल से नहीं जान सकता, तो वो जना है नहीं, उसके भरोसे कोई रहता है तो उसको धोखा होता नहीं। इस बात से परमात्मा तत्व तो है, ऐसा मानो है जैसा वो मेरा है, सगुण है तो मेरा है, निर्गुण है तो मेरा है, साकार है तो मेरा है, निराकार है तो मेरा है, सत असत से विलक्षण तो मेरा है, सत है तो मेरा है, वो मेरा है जो परमात्मा स्वरूप है वो, और ये संसार जीता है मेरा नहीं, सुख देखते देखते बदल रहा है, ये अपना कैसे होगा, ये अपना कैसे रह सकता है। इस बार तुम उसको याद करो। एक बात है ये ध्यान देने की सबके लिए बड़े काम की चीज, दूसरा है बर्ताव करने में उपकार का बर्ताव करो। ये स्वार्थ का बर्ताव है, ये पतन करने वाला है। हित का बर्ताव करो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे मिले, ये भाव करो। अपने स्वार्थ का भाव तो कुत्तों को मिल जाता है, तो मनुष्य बना क्या हुआ। तो सर्वभूत हित रहता प्राणी के मात्र के हित में प्रीति हो, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। इस बार से हित करो, व्यवहार में इसको काम न लाओ। व्यापार करो तो ये जो एक धारणा है कि वो कैसा ही हो पैसा ठग ले, बस ये महान पतन करने वाली चीज है। चाहे इस गान सुनो चाहे इस गान सुनो, सच्ची बात है। पर धुन यही है कि किसी तरह से अधिक कैसे ले। ये जो भाव है ना, ये बहुत पतन करने वाला, क्योंकि वो पैसा आपके पास रहेगा नहीं, आप पैसों के पास रहोगे नहीं। और उनका उपकार करोगे तो उपकार आपके साथ रहेगा, आपका स्वभाव अच्छा बनेगा हित करने का। और स्वभाव साथ रहेगा, मरोगे तो साथ में चलेगा। और स्वभाव फेंकने का खाऊ खाऊ का किया है तो ये स्वभाव साथ चलेगा, ये पतन करेगा, जहां जाओ वहीं पतन होगा। इस बात से सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे। व्यापार में भी आपके पास में अगर चीज खरीदता है उसको पैसा तो पैसे का लाभ होना चाहिए, ये धारणा रखो। और यदि ये खरीदता तो उसकी अपेक्षा मेरे पास खरीदने वालों को पैसा दो पैसे का लाभ अधिक होना चाहिए, ये भावना आपकी बन जाएगी। घाटा नहीं लगेगा और नफा बड़ा भारी होगा। भाव आपका शुद्ध हो जाएगा, वो लाखों करोड़ों रूपया देने पर भी नहीं मिलता, ऐसा भाव शुद्ध हो जाएगा। मेरे साथ बर्ताव किया और लाभ नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या किया बर्ताव। और सच्चाई रखो, झूठ कपट मत करो। नहीं कहना हो तो कह दो भाई ये बात हम बताएंगे नहीं, मत कहो। साफ कह दो नहीं बताएंगे, व्यापार की बात है हमारे घर की बात है नहीं बताएंगे, तो कोई पाप नहीं। परंतु झूठी बताना उसको और तय करना ये ठीक नहीं, असत्य बोलना ठीक नहीं। नहीं असत्य सम पात को पूंजा, गिरी सम हो कोटि में पूंजा, करोड़ कीर्ति भी इकट्ठी कर दीजा तो पर्वत के समान नहीं होती। करोड़ चिड़ी घूमी इकट्ठी कर देने पर भी क्या पर्वत हो जाएगा। ऐसे करोड़ों पाप इकट्ठे होकर के असत्य के समान कोई पाप नहीं होता। असत्य और सत्य दो तो चीज है, सत्य परमात्मा है, असत्य संसार। तो असत्य वासन करते हो सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। और असत्य टिकेगा नहीं, सत्य को आपने लिया नहीं, असत्य लिया वो टिकेगा नहीं। जयराम जी, इस वास्ते असत्य बोलकर धोखा मत दो किसी को। सच्चाई के साथ दूसरे के हित कैसे हो ये बात बनाओ। तब तो वो सत्संग पूछा कि सत्संग क्या है, सत का संग होगा। अगर झूठ कपट करोगे तो असत का संग होगा, वो नरकों में ले जाएगा। असत तो असत ही है, उसे सत्य प्राप्ति कैसे होगी। महान दोष है। इस वास्तव के व्यवहार में सदा ही अपने सच्चाई रखो, हित कैसे हो दूसरे का ये भाव रखो। सच्चाई के साथ असत्य से हित नहीं होता, कहीं बहम पड़ जाता है परंतु हित नहीं होता। सारी हित सत्य से ही होगा। इस वास्तव सबका हित कहते हैं। ये भाव रख व्यवहार हरेक तरह करना पड़ेगा, गृहस्थ में रहते हुए व्यवहार करना पड़ता है, अगर वो साधु होने पर भी व्यवहार तो करना पड़ेगा ही, ज्यादा कम व्यवहार पड़े ये बात एक अलग है, पर व्यवहार को छोड़ेगा कैसे जीवेगा तब तो। इसमें ये बात है कि दूसरे के हित का व्यवहार करो। सूर्य के सामने कोई चंदन चढ़ाता है तो चंदन चढ़ाता है सूर्य को, वो चढ़ता है अपने पर। ऐसे कोई धूल फेंकता है सूर्य भगवान के सामने तो अपनी वस्तु पड़ती है। ऐसे ये संसार के साथ बर्ताव भला करते हैं तो आपका भला होगा, आप चाहे जीते चाहे न जीते, और बुरा करते हो तो आपका बुरा होगा, आप चाहे न जीते पर नतीजा बुरा होगा। इस वास्ते सबके साथ अच्छा पढ़ करो, अच्छा और बुरे का ज्ञान सबको है। आप दूसरों से अपने लिए जो चाहते हैं वो अच्छा है, और आप औरों से अपने लिए नहीं चाहते वो बुरा है। आप नहीं चाहते वो बर्ताव औरों के साथ मत करो, आप चाहते वो बर्ताव करने में कमी भी आ जाए तो उसमें भी दोष की बात नहीं है, पर जिस बर्ताव को बुरा समझते वो बर्ताव बिल्कुल मत करो, बड़ा लाभ होगा। भला बर्ताव करने में तो पैसे खर्च होते हैं, परिश्रम होता है, पर बुरा बर्ताव मत करो इसमें क्या जोर आता है, और बड़ा भारी लाभ होगा इससे। तो किसी की बुराई मत करो। चार बातें हमारे पास, एक हमारे पास वाणी है, एक हमारे पास मन है, एक हमारे पास शरीर है। शरीर में सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, ये ताकत है, तो इनके द्वारा सबका हित करो। और हमारे पास एक पूंजी है, एक संपत्ति है बड़ी भारी, ध्यान दे के सुनना, वो क्या कि हमारी आयु बाकी है, जिसके बल पर हम जी रहे हैं, जीवन का समय, ये बहुत बड़ी भारी संपत्ति है। तो जैसे धन होता है, उस धन का उपार्जन करना, धन कमाना आदमी ठीक समझते कमाना है, पर उस धन कमाने में टैक्स लगता है, और सावधानी न रखने चोरी हो जाती, कभी कभी डाका पड़ता, तो चोरी हो जाती है डाका पड़ता है, तो इसे सावधान रहोगे। ये समय रूपी पूंजी है, जिस बल पर आप हम जी रहे हैं ये समय रूपी पूंजी है, इसमें अधिक नींद में समय जाता है वो चोरी हो गई, और झूठ कपट बेईमानी शरीर धोखेबाजी में शरीर चला गया, समय चला गया, वो डाका पड़ गया, डाका डाके में धन भी जाता है मार पड़ती है। ऐसे झूठ कपट बेईमान में समय लगता है, जो जीवन का समय दिया जाए तो मिल जाए परमात्मा, वो समय उसमें खर्च होगा, और झूठ का बेईमानी का दंड और पड़ेगा, तो धन भी जाएगा मार भी पड़ेगी। ये वो डाका पड़ गया है समय, और घर में धंधा करने के जो समय लगता है ये घर खर्चा योजना का खर्चा है, रसोई बनती है, कपड़े चाहिए, तीन वस्तु चाहिए, ये घर खर्चा है, तो ये करना ही पड़ेगा। और बिरादरी में काम होता है, वह किसी बरात में जाना होता है, कोई मर जाता है, कोई जन्म जाता है, उसके यहाँ काम पड़ता है, ये टैक्स है, जैसे धन कमाते हो राज का टैक्स लगता है, ऐसे कुटुंब का टैक्स लगता है, कुटुंब में टैक्स है, तो बरात में जाना पड़ेगा, कुटुंब में जाना पड़ेगा, तो ये टैक्स भी जाना पड़ेगा। समय रूपी पूंजी है, रखा हुआ धन यहीं रहेगा, कौन भी साथ चलेगा नहीं, तो असली पूंजी का संग्रह करना है। सज्जनों, उम्र जा रही है बड़ी तेजी से, और उम्र जाने पर मौत उसी क्षण आ जाएगी। हम जो जी रहे हैं वो विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, बल से नहीं जी रहे हैं। आयु हमारी जीने की, उस आयु के बल पर जी रहे हैं। वो आयु खत्म होते ही यहाँ से जाना पड़ेगा उसी क्षण, फिर एक घंटा या एक मिनट भी ठहर नहीं सकेंगे, टिक नहीं सकेंगे। जिसके बल पर हम जी रहे हैं वो बल खत्म हो रहा है, मन वो आयु समाप्त हो रही है, वो आयु जा रही है। आप हम जिस समय आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं। अगर अधघंटा आपको आए हुए हो गया तो अधघंटा समय चला गया। शब्द कड़वा लगता है पर बात सच्ची है। अधघंटा मर गए बहन है कि जी गए ना, अधघंटा मर गए, मौत अधघंटा नजीक आ गई तो मर रहे हैं प्रतिक्षण। अर्थात क्या है, निश्चिंत आश्चर्य की बात। सोचो, समझो, विचार करो, और वो मरने के साथ कोई नहीं रहेगा, धन संपत्ति भेदों के साथ और कई मिल जाएंगे आपने, उसमें हिस्सेदार बन जाएंगे, पर मौत में हिस्सेदार कोई नहीं बनेगा, अपनी अपनी मौत में सबको मरना पड़ेगा। वह रक्षा कोई कर नहीं सकेगा, अधिक से अधिक स्नेह हो तो रो देगा, क्या फायदा हुआ हमारे, क्या कर सकता है। इस बात से इनके भरोसे अपने समय को बर्बाद मत करो, भगवान के नाम का जप चिंतन करो कि क्या करें, कैसे करें, हम तो समझ नहीं सकते क्या करें। कुछ नहीं समझते तो नाम का जप करो और उसको पुकारो, प्रार्थना करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, गुण गाओ, पद गाओ, नाम कीर्तन करो और उसका नाम जपो, उसको याद करो, पुकारो। जो परमात्मा को पुकारता है उसका रास्ता ठीक हो जाता है। जैसे हम सगुण माने, निर्गुण माने, क्या माने, ये जरूरत नहीं है आपको। परमात्मा है, कैसे है वो आप बुद्धि से अटका नहीं लगा सकते। बुद्धि है प्रकृति का कार्य, तो प्रकृति को भी बुद्धि नहीं समझ सकती। प्रकृति से अति तत्व को बुद्धि कैसे समझेगी। एक मिट्टी से बनने वाला घड़ा, उस घड़े में पृथ्वी भी अंत नहीं, आकाश को कैसे समझ लोगे। ऐसे बुद्धि के मैं तो समझ में नहीं आती। प्रकृति प्रकृति का कार्य बुद्धि है, प्रकृति से अभी तत्व को नहीं समझ सकते, मान सकते हैं कि प्रकृति से अभी ये तत्व है। ऋषि मुनियों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, और उन लोगों ने उसको प्राप्त किया है, और वो मन बुद्धि से नहीं अपने स्वयं से प्राप्त किया है, स्वयं उसी का अंश है। वो स्वयं भर में अभिमान छोड़कर उसको प्राप्त कर सकता है, उसको कब्जे में नहीं ले सकता कोई। इस बार से नाम का जप करो, कीर्तन करो, पुकारो, उसकी लीला पढ़ो, उसके गुण देखो, उनके चरित्र देखो। ये उपाय है। आज दिन तक क्या आपके संज्ञान उस संज्ञा के अनुसार से ज्ञान हो, उपासना करो। असली वो क्या होगा कि आप जब संसार से हटकर अपना ध्येय परमात्मा उसमें तत्पर लग जाओ, तत्परता से, तो वो परमात्मा स्वयं आपको अपने आप को जना देगा कि मैं कैसा हूं। और परमात्मा के द्वारा जनाया हुआ जितना ज्ञान होगा वो अभी शास्त्रों से अपनी बुद्धि से ज्ञान नहीं होगा। मनुष्य भी वैसा ज्ञान कोई बता सकता नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं, उसी के आश्रित हो जाओ, वो बता देगा, ठीक ठिकाने ले आ जाओ। इस बात उसको पुकारते रहो, याद करते रहो, चिंतन करते रहो, रोकर पुकार, भैया बंदीवान को करिए कूक पुकार, जोर जोर से उसको कहो कि महाराज मैं जानता नहीं हूं। एक बाबा जी थे साधु संत, एक गांव में पहुंचे और शिवालय में ठहर गए, तो वहां एक बुड्ढा आया करता, अपना पोता परपोता छोकरा उसके कंधे पर हाथ धरा हुआ आता वहां। शिव जी के सामने आकर के नमस्कार करके चला जाता। एक दिन संत ने पूछा कि बूढ़े बाबा रोजाना क्यों आते हो? तो भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए। तो पूछा कि दर्शन काय से करो? आंखों से दिखता है कि ना? अरे सूझता है कुछ के नहीं मारा, ये लड़का है इसके सहारे से आता हूँ, दिखता नहीं है। तो क्या दर्शन काय से करोगे? शंकर के दर्शन करने के लिए आप दर्शन काय से करोगे, दिखता ही नहीं है। तो बोला महाराज दिखता मेरे को नहीं है, शंकर को भी नहीं दिखता है क्या? जब आ गया उसने मेरे को देख लिया, मेरा काम हो गया। ऐसे आप परमात्मा को नहीं जानते क्या? परमात्मा को, परमात्मा आपको नहीं जानते हैं? सत्य ऐसे तो उसके पुकारो, भगवान कहते हैं मेरे को पुकारता, वो भगवान अपनी पुकार मान लेते हैं। जब आपका हृदय होता है तो ये था माम प्रपजनते तथे भजन में, हम मेरे जैसे शरण होते मैं वैसे ही भजन करता हूँ उसका। इस बात से भगवान है इतना मान करके आप चलो। देरी क्या है? संसार को जो आप महत्व देते हो, ये महत्व जब तक न निकल जाए बस इतनी देरी है। ये निकलते ही वो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे सामने, वो आपको गिना देंगे कि मैं कैसा हूँ, सगे हूँ, निर्गुण हूँ, साकार हूँ, निराकार हूँ, जो मुझे वो बता देंगे। एक देवी का भक्त था, बड़ा विश्वास भगवती माँ कहता माँ 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 ऐसे करता और उपाय वो भजन करता अपना। साधारण पढ़ा लिखा था, पंडित था नहीं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा था। पाठ करते नमस्तस्मै 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 नमो नमः ऐसे बोलता था। एक पंडित आ गया, उस पंडित ने कहा क्या करता है तू? यदि माँ की उपासना करता हूँ तो नमस्तस्मै कैसे कहता? तो नमस्तस्यै 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 नमो नमः ये शुद्ध होता, नमस्तस्मै ये शुद्ध नहीं अशुद्ध बात है। अब वो माँ को याद करके जो बोलता था, अब पंडित ने कह दिया तो नया अभ्यास कर तो उसका चिंतन करना पड़ता है। पाठ करते करते नमस्तस्यै फिर नमस्तस्मै आ जाए, फिर नमस्तस्यै ऐसा ख्याल रखे। तो उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ माँ की तरफ लगी हुई थी, उस वृत्ति में बाधा पड़ गई। अब वो ये पंचायती पड़ गई, क्या कहें, नमस्तस्यै कहे कि नमस्तस्मै कहे? फिर बेचारा नमस्तस्यै कहता फिर नमस्तस्मै आ जाता, ऐसे उसके विक्षेप पड़ा। वो तो पंडित जी के रात्रि में भगवती देवी ने माँ ने दर्शन दिए और छाती पर बैठ गई कि तू मेरे को सी मानता है? अब बोल पुरुष क्या करेगा तू, मैं अभी खत्म करती हूँ। तो माँ ऐसा मत लेंगे, मेरे भक्त को तेने क्यों प्रेम डाल दिया? मेरा भक्त बोलता है मेरे को अच्छा लगता है, जो बालक है तो ही बात आ सुनाई मुझी तुम्हारे सी तू अरुमाता। बच्चा तोता तोता बोलता है गोद में बैठा हुआ, माँ को बड़ा अच्छा लगता है। वो शुद्ध उच्चारण करे उसकी जरूरत नहीं है, वो अपने बल से ठीक कहता है, अपने वाता जैसा कहता है, तो अपने भाव से बोलता था, उसे विक्षेप क्यों डाल दिया था ने? तो पंडित जी जागर माफ करना भाई, तुम्हारे जैसे मन आवे वैसे माँ को पुकारो, माँ को पुकारो कैसे जैसे मन आवे वैसे पुकारो। अरे माँ है वो अशुद्धि की तरफ देती है क्या? वो अशुद्ध देखती नहीं, माँ तो भाव देखती है। माँ 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 कहता है तो माँ खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। ये शुद्ध अशुद्ध कहता है, अरे भाई तो अशुद्ध ही होता, अशुद्ध करे तो माँ करो। ताजे में कीचड़ में मैले में भरा हुआ है, पवित्र करना हो माँ को तो वो स्नान कराओ, वो तो स्नान कराओ तो भी रोएगा कि मेरे क्यों स्नान कराते, वो तो शुद्ध होना नहीं चाहता। ऐसे हम भगवान की तरफ चले, हम जैसे हैं वैसे ही जावे। बच्चा अगर मैले में भरा हुआ है तो बच्चा तो गोद में बैठना चाहता है, माँ पकड़ करके बाहर रख दी, हाथ पकड़ लिया यहाँ रखा, तो बोध से दूर रहना बच्चे को अच्छा नहीं लगता, ये समझ में नहीं आती। और माँ अगर गफलत में रह जाए तो वो तो मेले में भरा हुआ साड़ी में जा बैठा था गोद में, अब जारी साड़ी खराब हो गई, तू जाना तेरा तेरा काम, हम तो बैठेंगे क्यों, गोद हमारी है, हमारी माँ भी गोद के हम अधिकारी हैं। ऐसे आप भगवान की तरफ चलो तो भगवान को शुद्ध करना हो तो शुद्ध कर लो, अशुद्ध तो अशुद्ध ले लो, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसे आशे से भगवान को छुपा। तो रहते में प्रभु चित चूक किए कि भगवान को चूकती हुई बात याद रहती नहीं। भाइयों बहनों ध्यान दो, अपने बचपन में माँ के कितने कितने अपराध किए हैं, कितना कितना माँ को तंग किया है, क्या माँ को याद है जितने इतना तंग किया मेरे को, कितना इसने दुख दिया, क्या माँ को याद है, क्या याद है कि नहीं, मेरा लाला है बस मेरा बच्चा है, ये अपना अपन याद है माँ को, कितनी कसूर गई याद नहीं। ऐसी वो माँ परमात्मा जो सबका तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो असली, उसको याद नहीं रहता क्या किया क्या नहीं, और पुकारो वो याद, माँ माँ जहाँ करे पद आकृष्ट हो जाता है, माँ आ जाती है, प्यार करती है, गोद लेती है, हृदय लगाती है, दुलारती है, सब तरह से रक्षा करती है, पालन करती है। ऐसे प्रभु की तरफ पुकारो हृदय से, हम कैसे हैं भगवान कैसे हैं, जरूरत नहीं कैसे भी, हमारी माँ है बस, वो कैसी है, धनवती है, निर्धन है, सुंदर है, असुंदर है, गुणवती है, बिल्कुल मूर्खा है, कैसी है, जरूर नहीं, मेरी माँ है बस, मेरी माँ है, हमारी माँ है बस, ऐसे भगवान हमारी माँ है। पुकारो तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु ससुरा तुम्हें, तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम ममदेव देव। कहते हम तो वेदांत पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात, वेदांत का काम क्या है, जड़ता का परित्याग, जो उत्पत्ति विनाशील है जड़ है उससे विमुख होना, ये उपयोग है वेदांत का। और भक्ति का उपयोग क्या है, कि चिन्ह में परमात्मा के सन्मुख होना, तो जड़ता का त्याग करने में तो वेदांत काम में ले लो, और चिन्ह में परमात्मा की तरफ उनके होकर पुकारो ये काम में ले लो, तो उनके पुकारना ये भक्ति हो गई, और जड़ता का त्याग हो गया ये वेदांत हो गया, आपका अद्वैत सिद्धांत आ गया। बस जड़ता के आकर्षण मत हो, बात वेदांत करते आकर्षण जड़ता में होता है, बातें बातें रह जाएगी, बहम बढ़ जाएगा, होगा फायदा कुछ नहीं, नुकसान हो जाएगा, इसलिए भरोसे रह जाओगे। इस वास्ते जड़ता का महत्व हृदय से न रहे, काम करो, काम में लो, रुपया पैसा काम लो, चीज वस्तु काम में लो, भाई बंधु शुद्ध कुटुंब है जिनका पालन पोषण करो काम में लो, परंतु भरोसा नहीं, नाशवा रहेगा रहेगा नहीं, और भूत ग्राम से वायम इसका नाश होता नहीं, ये परमात्मा का अभी अविनाशी अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी विनाश नहीं होता, ये रहता और ये बदलते हैं, सब बदलते हैं, तो बदलने वालों का हाथ से मत रखो, उनका सहारा मत लो, उनका भरोसा मत रखो, भरोसा रहने वाला का रखो, रहने वाले परमात्मा है, अनादिकाल से सदयुग त्रेता द्वापर कलि चारों युग बीत गए और कई बार बीत गए, उनमें परमात्मा वे के वे ही रहे, युग बीत गया, वस्तुएं बीत गई, परंतु परमात्मा का परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे नहीं कहते कि ये कलयुग के परमात्मा है, पहले सतयुग के परमात्मा थे वो दूसरे थे, अब कलयुग के भगवान आ गए नए, ऐसा नहीं, भगवान वही हड्डी भी वही है, बदलता है सही बदलता है, वस्तुएं बदलती है, परंतु परमात्मा वही होती हुई, और उसी काल की ये है, तो बदलने वालों की तरफ ध्यान मत दो, ये वेदांत का तात्पर्य, इनका आदर मत दो, इनको महत्व मत दो, इनसे विमुख हो जाओ, फिर भगवान के सन्मुख हो जाओ, संसार से विमुख होना सिखाता है वेदांत, सन्मुख होना सिखाती है भक्ति, बस सन्मुख हो जब ही जन्म को जगना सही तभी और ये सन्मुख होने के लिए दुनिया को सुख पहुंचा है। सेवा करो, दूसरी दुनिया से हमें क्या लेना है, ये दुनिया से लेना नहीं है, दुनिया का कर्जा है बाबा, कर्जा। जहाँ पैदा हुआ हो वहाँ पिता का तो अन्न और माँ का दूध, उनसे पले हो, उनसे शिक्षा प्राप्त की है, संसार से लिया है, उसका कर्जा उतार दो, नहीं तो कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। पापी की हो जाए किसी तरह से, बट कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। कर्जा जिसका है वो माफ कर दो, कर्जा होगा नहीं तो दंड भोगना पड़ेगा। तो संसार का कर्जा है, हरेक जन्मों में, इस जन्म में भी संसार से बहुत उपकार पाया है, इस बार भी संसार की सेवा कर दो, ये कर्जा उतार दो। माता पिता गुरुजन आचार्य है, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, तो आपका कर्जा उतर जाएगा। कर्जा तो सिर पर है और दान देने को करे। अरे कर्जा तो उतारो पहले, बड़े बूढ़ों का आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो। तो घर में जो कोई बड़े बूढ़े हैं उनका आदर करो, उनकी सेवा करो, उनकी आशीर्वाद से परमात्मा मिलेंगे। वे चाहे परमात्मा को प्राप्त न हुए हों, परंतु उनकी प्रसन्नता है वो आपका कल्याण करने वाली है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इतनी पक्की बात है, इतनी सच्ची बात है, इतनी सिद्धांत की बात है। इस बात से सबका हित करने का भाव अपना लेना चाहिए। हे प्राप्त मंत्री माने सर्वभूत हेतु का सेवा, उनकी सेवा करो, सुख पहुंचो, हित करो, ये अपना कर्तव्य है। और यहाँ रहना नहीं है, याद रखना, ये जैसे अभी सत्संग के लिए इकट्ठे हो गए, ये समाप्त होते ही, समय समाप्त होते ही उसी क्षण जाना पड़ेगा, उसी क्षण, देरी का काम नहीं है। इसमें भी थोड़ा दो चार मिनट आप ठहर भी जाओ, पर जिस दिन यहां से जाने का टिकट कटेगा उसमें एक क्षण भी टिक नहीं सकोगे, उसी क्षण जाना पड़ेगा एकदम। और यहां स्थाई मतलब ये मत रखो कि हम यहीं रहेंगे। बड़े बाप दादा परदादा थे, बड़े बड़े बुद्धिमान, समझदार, बलवान, धनवान, संपत्तिमान, राजा महाराजा, वे भी चले गए, वे नहीं रह सके, तो हम कैसे रहेंगे? या रहने की रिवाज नहीं है, ये मृत्यु लोग है, मरने वाले में लोग। इस बात से यहाँ रहने की जो स्थायी स्थिति मान लेना है, ये गलती। यहाँ काम करने के लिए आए, रहने के लिए नहीं आए। आप हम सब इस मकान में सत्चर्चा करने के लिए आए हैं, या रहकर डेरा लगा ले, इस बात से नहीं आए। अगर डेरा लगाओ तो निकाल देंगे, दो दिए धक्का और निकालेंगे यहाँ से, रह नहीं रहेंगे। सत्संग करो, चर्चा करो, कोई मना नहीं करेगा, मैं कब क्या करोगे तो नहीं देंगे, निकाल रही है। ऐसे यहाँ आए उच्च लोग में, आप कब्जा करोगे जो दे धक्का और निकालेंगे, रहन देंगे नहीं, टिकट देंगे नहीं, कभी किसी हालत में कभी भी जा सकोगे नहीं। और काम करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, प्रसाद करो, भजन करो, उपकार करो, ये करने के लिए खुली है आपके लिए। पर कब्जा नहीं कर सकते, मनुष्य कब्जा करते हैं, शरीर मेरा है, धन भी मेरा है, कुटुंब मेरा है, घर मेरा है, जमीन मेरी, भैया तुम्हारी नहीं, किसी की नहीं। ये तो मुसाफिर खाना है, यहाँ आए हो तो काम कर जाए। जैसे प्याऊ लगाते हैं कोई जल की, तो आवे उसको जल फैला दो, बस उनके साथ काम है, जल फैला दो। भूखा हो तो बस चढ़ा दो, तो जो खाते चीज दे दो, बस। वे कहाँ से आया और कहाँ जाएगा परवाह नहीं, आपको तो सेवा करनी। ऐसे संसार में करते हुए उनकी सेवा करना आपका काम है, उनके साथ अपनापन करके और लाग करके मरना नहीं, अपना पतन नहीं करना। मौका है इस बार सेवा करना। बड़े अच्छे अच्छे पुरुष है, उन्होंने ये काम किया, वे स्थाई यहाँ रह करके और यहाँ पर कब्जा कर रहे, ऐसा नहीं किया। वो अधिकार इतना ही है जिनके सेवा बन सके, उसके लिए ये सामग्री है। तो सेवा के लिए सामग्री है, रखने के लिए, अपने बनाने के लिए नहीं। इस बार से सेवा करो, तन कर, मन कर, वचन कर, देखने का वो दुख। तो मैं बात कह रहा था, आंखों से देखते हैं तो देखने में अच्छी दृष्टि से देखो। समय हमारा है ना, वो जो ज्यादा नींद में जाता है वो चोरी हो गया, पापों में जाता है वो डाका पड़ गया, और आलू से परमात्मा कहें फिर काम करेंगे, सगाई हो गई सगाई। आलस गुण बैरी बैरी गुण आलस ठग मारे, आलस एक ठगता है तो सगाई में धन चला जाता और संसार काम में वो कैच लगता है, और शरीर के लिए का समय लगता है वो घर खर्चा है वो करना पड़ेगा, भगवान के लिए लगता है वो असली कमाई है, वो पैदा है, वो संग्रह है, वो खजाना है, उसी में लगाओ। बढ़िया बात तो यह है, घर का काम करते हुए भगवान को याद रखो, खाना पीना करते हुए भगवान को याद रखो, सेवा करते हुए संसार का काम करते हुए भगवान को याद रखो। भगवान को याद रखता हरदम रखना है, सर्वे सुखाले सुमा मनोस्मर, सब समय मेरे को स्मरण कर, और युद्ध कर युद्ध भी कर, सर्वे सुखाले से युद्ध नहीं होता, युद्ध तो समय समय पर होता है। ऐसे घर का काम जब आ जाए वो काम कर लो और भगवान को याद रखो, प्रभु को स्मरण करो याद रखो, ये खास बात। उसके लिए यह मानव शरीर मिला, ये खाना पीना आदि लड़ाई झगड़ा सोना जगना तो हरेक पशु पक्षी जोड़ी में हो जाएगा, परंतु भगवान का भजन करना और उपकार करना दूसरों की सेवा करना ये दो काम पशु पक्षी आदि नहीं कर सकते, ये तो इस मनुष्य शरीर में ही होता है। तो इस मनुष्य शरीर में होने वाला काम पहले करना और जगह हो जाने से क्या बात, जिस बाजार में जाते हो जो माल वहां मिलता है वो वहां खरीद लो, जो सब जगह मिलता है उसके लिए क्यों भार मारते क्यों लेते हो, क्यों बढ़वा देते सब जगह मिले, इलाज खाना पीना सोना जगना बैठना ये तो सब जगह होगा, बाल बच्चे सब जगह हो जाएंगे, मोह ममता भी हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा, नींद भी आ जाएगी, पर दूसरों का हित करना भगवान का नाम लेना भजन करना ये दो काम यहां ही होते, ये और जगह बाजार है नहीं, इस जगह आकर ये काम कर लो और प्रभु के चरणों का आश्रय रखेंगे, चलो फिर ठीक है आनंद भी आनंद है। अरे यहां अगर भूल कर रही तो भाई पश्चाताप करना पड़ेगा, बाल्यावस्था में पढ़ लिए अच्छी बात, अब बड़ी अवस्था होगी जब पढ़ने को समय नहीं मिलता खेल कूद में खो दिया, इसी तरह से यहां पदार्थों के बटोरने में भोग भोगने में समय खो दिया तो खेल कूद में चला जाएगा, हाजिर कुछ नहीं होगा, खेल खेले उसका आज क्या जमा क्या है आपके पास, और विद्या अध्ययन किया वो आज भी अक्षर याद है और काम रहेंगे, ऐसे भजन स्मरण करोगे वो तो साथ में पूंजी हो गई, और जहां धन कमाया और भोग भोगे लग गए तो साथ में क्या रहेगा, कुछ नहीं, पश्चाताप रोना रहेगा, दुख पाना रहेगा, कुछ नहीं है। इस बात से बड़ी सावधानी से अब जितना समय लग गया है अब भगवान में लगाए, अब लो नशानी अब लो नशही, इस बात से समय रूपी पूंजी है, ये बहुत बढ़िया पूंजी मिली है, ये है तो नाशवान पर तो अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करा दे, ये समय लगाया जाए नेत्र से धनवान बन जाए, बालक से जवान बन जाए, मूर्ख से विद्वान बन जाए, अरे भाई मूर्ख होता क्या, परमात्मा की प्राप्ति कर ले समय दे करके, इतना समय कीमती है और वो समय चला गया तो फिर कुछ हाथ में रहने का है नहीं, समय चूक फिर पूरी का पछताने फिर पछताप करने से क्या होगा, हाथ से निकल जाएगा, तो जब तक ये शरीर ठीक है यावत स्वस्थ मृदंग कले वर गृह यावत दूरे जरा यावत इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत खेलो नायुष आत्मा श्रेयस तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान लोकदीप्ते भवन हेतु उपकरणम प्रत्युद्यमा की। जब तक स्वास्थ्य ठीक है शरीर में बीमारी नहीं लगी है वृद्धावस्था नहीं आई इंद्रियों की शक्ति है बैठ सकते हैं उपकार कर सकते हैं सेवा कर सकते हैं सामर्थ्य है आयु समाप्त नहीं हो गई है तभी तो विद्वान को चाहिए कि अपना काम कर ले सेवा कर ले घर स्मरण कर ले दूसरों को सुख पहुंचा अपने पास जो उनके द्वारा हित कर ले नहीं तो एक हाथों से निकल जाएगा चलिए कुछ भी पास में रहेगा नहीं और फिर बस फिर क्या है जैसे सम्मेलन और वैकेंसी दृष्टि एक राजा थे, वो राजा बड़े विद्वान थे, सोते सोते वहां विचार करते हैं महल में कि हमारे पास में कितनी सामग्री है, कितना हमारे पास राज्य है, कितना वैभव है, हमारे सब के सब राजी है, वो राज्य बड़ा है, बेटा पोता सब ठीक है, फौज पलटन सब ठीक है। ऐसे वो चिंतन करते हैं तो विचार आया भी एक श्लोक बना दें। तो वहां देखा तो महारानी पास में सोई हुई थी, ते तो हरा युवत लिखा, चित्त को अपहरण करने वाली अप्सरा किसान में जिसकी और अपने पुत्र परिवार स्वजनों अनुकूल, भाई बंधु भी हमारे अनुकूल है और जितने कुटुंब भी है वो भी हमारे अनुकूल, और गर्भगृह से विद्या प्रणय गर्भगृह भृत्य मेरे नौकर है जी हजूर, हाथ जोड़ के बोलने वाले हमारा काम करने वाले नौकर है, और हाथी और घोड़े और पैदल और रथ इनकी सेना बड़ी भारी है, गर्भगंध निवाहा ये सब के सब काम कर रहे हैं। ऐसे करके तीन चरण तो कर लो, तीन फ्लो तीन चरण तो दो दिए, अब चौथा चरण छोड़ते तो नींद आ गई, जो कलम वाली पड़ी रही और हमारे ऐसा साहस है तो हरा ये बताया सजनो अनुकूल सुख बांधवा प्रणय गर्भ गिर विद्या गर्दन दंत निवाह सरला सुरंगा तीन चरण। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे, उस पंडित जी का लड़का चोर बन गया, तो पंडित जी ने उसको सिखाया पढ़ाया और पढ़ा करके उनको कहा कि देखो चोरी में ये दोष है, इस चोरी में दोष है, इसी चोरी में खूब दोष बताए, उसको याद हो गया चोरी से पाप लगता है, चोरी नहीं करना है, परंतु रात्रि में नींद न आवे, दूसरों घरों में जाकर के चोरी न करे तब तक चक न पड़े हालात खराब बन गए। रात्रि में पहुंचा वहां राजा के वहां, वहां खेत महल में पहुंच गया, पूछा कौन है चोर, लोग समझ गए पैर वाले भी चोर थोड़े चोर गया था, वहां पहुंचा पहुंचा तो वो श्लोक लिखा हुआ देखा, पिताजी ने पढ़ाकर पंडित बना दिया, तो वो श्लोक देखा तो चौथा चरण नहीं है, तो धीरे से वो कलम ले ली, राजे के हाथ से कलम लेकर और नीचे लिख दिया कि सम्मिलने नयर मयोर नीचे नीचे दस्ती, ये सब का सब है पर दो आंख मिटकी उस दिन कुछ नहीं है। फिर चला गया, अब चोरी क्या करे, तो उस दिन को संक्रांति थी, चना भाई मूंग की दाल धोई थी उसके छिलके पड़े थे और छिलकों का कहीं दोष आया नहीं साथ में, वो उठाकर चला गया, तो ठीक हुआ फिर पूरा करके निकालना नहीं पड़ा, उसने अपना जश्न पूरा कर लिया। अब उसे किसको पता लगे क्या चोरी हुई, घूमी चोरी को घूमी, सुबह राजा उठे तो नींद खुलते ही देखा कि नीचे लिखा हुआ है कि सम्मेलन नये नये होने की दस्त इतनी संपत्ति हो पर आग में जी कुछ नहीं, ये झोंकड़ी बंद होते जयराम जी बड़ा विचार आ गए हूँ, मैं अभिमान करता हूँ किसने लिख दिया, ये तो अक्षर भी मेरे नहीं है, नींद आ गई शायद लिख दिया हो मेरे अक्षर भी और मेरा विचार भी नहीं था, ये कैसे लिख दिया किसने लिख दिया, तो सुबह एक दुखी बताई कि हमारे महल में किसी ने लिख दिया है, वो लिखा तो उसको इनाम देंगे, पंडित जी को बैन पड़ा, थोड़े को पूछा तू गया था कि हाँ मैंने गया था, तू झूठ नहीं बोलना चोरी नहीं करना, तू साथ बोल गया, तो वहां कुछ लिखा था हाँ क्या लिखा कि तीन चरण तो वहां लिखे हुए थे और श्लोक का चौथा चरण पूरा हुआ नहीं, तो मैंने नीचे लिख दिया कि सम्मेलन नये नये दस्ती पूरा कर दिया, पंडित जी पकड़ कर ले गया उसको और राजा के सामने ले गया कि महाराज ये चोर है, जो धन जाना वो दो, लेकिन उन्होंने घोषणा की थी कि कौन